जाया गोपी जाना बल्लभारी जाया गोपी जाना जाया गोपी जाना बल्ला गिरिवर धारी जाया गोपी जाना बल्ला सोदानंदन ब्रज जनरंजना योशोदानंदना प्रजा जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी jaya gopi jana vallava girivara dhari jaya gopi jana महाभागवत पर गोपी सुदास महाराज की जय जय समत भक्तविंद की जय श्रीमद भागवत मंत्रराज की जय अनंत परिवशंद की जय निताय गोदानंदे नामा श्रेष्ठा मनुमपी सचिपुत्रा मत्रा स्वरूपां रूपां तेजाग्रजां मरुपरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुंडा गिरिवर मोह राधिका माधवासं प्राप्त जिच्च प्रसिद्धपयां गुरुं तं नतो यस्मिं वांछा कल्पतरूपैश्च कृपा सिन्धुवेव च परितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्तापराधलक्षे क्षिप्रादिकमादितरंग मध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ने वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावतिग्भ्य विसुन्दराय तस्मै मा प्रेमरस प्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते सासुक निवेदितद्बुद्धस्तन भाव क्वजीत रुचिलाकृष्ट सारस्तम व्यतनोद कृपस्तीप पुराण कमखल विजीना व्यतसो नस्म भवे भवज सा भक्ति पादस्तव जायते तथा पुरुष देव सुनाथ सनजता प्रभो नाम संकीर्तन ऋष्ट सर्पापनाथना प्रणाम दुख समनस्तु तं नमा हरि परा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरांचैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये नाष्टप्रयेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भागवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नश्चकी। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद द्वादश अध्याय श्लोक नंबर 18। दृष्ट्वा तां तादृशां सर्वे मत्ता वृंदावन श्रियां व्याताम् अजगर तुंडिना हि उत्प्रेक्षन्ते मा लीलया। दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्ता वृंदावनाश्रियां व्यतात् अजगर तुंडिना उत्प्रेक्षन्ते स्मा लीलया। दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्ता वृंदावनाश्रियां व्यत्ताजगर तुंडेना उत्प्रेक्षन्ते स्मा लीलया। दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्ता वृंदावनाश्रियां व्यत्ताजगर तुंडेना उत्प्रेक्षन्ते स्मा लीलया। बोलो देखकर ताम उस अघासुर को आदिशाम उस अवस्था में सर्वे कृष्ण तथा सारे बालकों ने मत्वा सोचा की वृंदावन श्रियाम वृंदावन की सुंदर मूर्ति
ध्याता
हुआ अजगर कुंडे न अजगर के मुंह जैसा हीम निस्संदेह उत प्रेक्षम ते मानो देख रहा हो माँ भूतकाल में लीलाया लीला के रूम में अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इस असुर का अद्भुत रूप विशाल अजगर के समान था। इसे देखकर बालक ने सोचा कि हो ना हो वह वृंदावन का कोई रम्य स्थल है। तत्पश्चात उन्होंने कल्पना की कि वह विशाल अजगर के मुंह के समान है। दूसरे शब्द में निर्भीक बालक ने सोचा कि विशाल अजगर रूपी वो मूर्ति उनके क्रिया आनंद के लिए बनाई गई है। तात्पर्य इस अद्भुत दृश्य को देखकर कुछ बालक ने सोचा कि वो अद्भुत वह सचमुच अजगर है, अतः वह वहां से भागने लगे। इन अन्य ने कहा क्यों भाग रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अजगर वहां रह सके, वह तो खेलने का रमणीय स्थल है। उन सब ने ऐसे कल्पना की। ये एक बात सुनो, दुर्वासा मुनि ने इंद्र को माला प्रदान किया था। माला इंद्र ने किसको दे दिया? हाथी को। क्या हाल हुआ? क्या हुआ? सत्यानाश हो गया। इसलिए जब कोई माला रहता है उसको धारण करना चाहिए, नीचे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? वो हम नहीं बोलना चाहिए, इसलिए समझे, क्योंकि माला निर्माल्य होता है। निर्माल्य धारण करने से भक्ति लाभ होता है। विष्णु निर्माल्य का कभी, तुम्हारा नाम भी विष्णु है, विष्णु निर्माल्य को भी त्याग नहीं करना चाहिए, जो सम्मान पूर्वक धारण करना चाहिए। एक जगह में कहा था ये गुरु अगर बनना है लोग तो गुरु का जय ध्वनि देगा। अगर गुरु बोलेगा हमारा जय मत दो तो तुम गुरु बनने कौन कहा था? शिष्य का काम गुरु का जय देना। गुरु अगर कहे कि हमारा जय मत दो तो तुम गुरु बनने कौन कहा था? ये बात समझे, नहीं तो घासूर क्या खा रहा है, मुथुरा जाओगे तो अघासुर मिलेगा। जन्मस्थल में जाओगे तो अघासुर बना हुआ है, उसका मुंह में घुसो उससे बाहर निकलो। देखा कभी हम गया अघासुर जैसे बना हुआ है, हा करके सब घुस रहा है उसका अंदर। तो हम भी जाए, टिकट ले रहा था पता नहीं 5 रुपया ऐसा कुछ, हमको देख के पैसा नहीं लिया, बोले महाराज आपको पैसा नहीं दूंगा, आप ऐसा ही घुस जाओ। तो मैं ऐसा ही घुस गया, अंदर बहुत सारे अघासुर बना हुआ है, अंदर बहुत सारे रमणीय दृश्य बनाए, कहा नौका विहार हो रहा है, पूरा ब्रज का लीला विलास है। तो एक एक जगह में एक स्टेप बाई स्टेप दिया हुआ है, आज जाके मुंह में घुसो पूछ से निकल जाओ। ये अघासुर क्या है? अघासुर कर्म मार्ग, कर्मकांड गान कांड केवल विशेष भाण्ड अमृत बोलिया जगह खाए नाना जनी सदा फिर कदर्य भक्षण करे तार जन्म अधपात जाए। अघासुर ब्रज भजन में अघासुर है। अघासुर ये क्या है? सब कुछ खा लेना चाहते हैं, आपका भक्ति को भी वो अघासुर खा लेगा। इसलिए अघासुर से बचना चाहिए। बोले अघासुर कैसे बचेगा? जैसे अब किया ना, इस अघासुर माला के नीचे रख देना है, अघासुर है हमको खा जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए ये सब असुर से बचना चाहिए। अगर नहीं बचेंगे तो हम सोचते हैं रहेंगे, हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं मरने के बाद पता चलेगा, उससे पहले तो मालूम नहीं पड़ेगा क्या कर रहे हैं हम। तो मन में गुड़ खाने से बजाय अच्छे से गुड़ खाओगे तो अच्छा है। इसलिए क्या बोलते हैं, साधु सावधान करो अवधान। महाप्रभु का विचारधारा जब तक स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हरिभजन नहीं होता है। जो हरिभजन का जो वस्तु है ये प्रदान करने वाला स्वयं महाप्रभु है। तो महाप्रभु अपना आचरण के द्वारा जो शिक्षा दिया, महाप्रभु का चरित्र अगर आलोचना करोगे ऐसा किसार भी नहीं जो आचरण गलत हो जाए, किसार भी नहीं। इसलिए उनका आचरण अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हमारा भक्ति नहीं होगा। मन गरम तो गोरा भजा, मन गरम तो अगर गोरा भजा का मन में अपना गढ़ लिया भाई ऐसे गुरु भजन महाप्रभु का भजन है, ये नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ वृंदावन लीला में अघासुर का वर्णन दे रहे हैं। वृंदावन रम्य स्थान, रमणीय स्थान वृंदावन है, उसमें कोई असुर नहीं रह सकता है। लेकिन ये सब असुर लोग आते हैं वृंदावन में, वृंदावन में आकर के भगवान का कृष्ण का क्रिया का उपकरण बनता है। और भक्त लोग इस लीला को सुन करके तुत्रा ता विश्व पढ़िए, रासलीला का वर्णन किया गया है, तुत्रा इसको श्रवण करके ता विश्व भवेश, उसी प्रकार भजन किया करे। अगर नहीं करता है तो क्या होता है, अनर्थ होता है। इसे विधिलिंग प्रयोग किया गया है। ये सब सुनने के बाद लीला कथा रस निशे बने न, जयदेव कवि जयदेव ने लिखा है, लीला कथा रस निशे बने न, कवि जयदेव गीत, जयदेव का गीत ये भगवान का लीला कथा का रस का निषेवन करना चाहिए। निषेवन शब्द का अर्थ क्या है, गन्ना का वो मिशन से पीटता है, रस निकाल करके खोआ बाहर आ जाता है। इस प्रकार भगवान का लीला कथा का रस जो है उसका निषेवन करो, उनका सेवन करो, प्रकृष्ट रूप में पान करो। मुहुरो रुचिका भूवि भावुका, हे भावुक व्यक्ति सब, आप सब जब तक मृत्यु नहीं होता है तब तक श्रीमद् भागवत कथा का रस पान करते रहो। अगर समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, हमारा जो नियम है रघुनाथ के नियम जनक पाषाण रेखा, रोज पढ़ने का है तो रोज पढ़ने का है। अगर श्रद्धापूर्वक हम रोज पाठ करेंगे तो भगवान श्रीमद् भागवत एक दिन कृपा करके अपने आप को समझाएगा भागवतों का महत्व है। तो योगासुर भक्ति मार्ग में जीव अपने आप को सज लेते हैं जो हम भजन कर रहे हैं, लेकिन ये अघासुर हमारा भक्ति को खा जाता है। जैसे कोई ने कहा साप है, कोई ने बोला खिलौना है, तो ऐसे ही होता है। तो हम सोचते हैं ये भी भक्त्यांग ही होगा और क्या है, ये वास्तव में भक्त्यांग है कि नहीं है ये जानकारी करने के लिए हमें शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। और शास्त्र अगर कहते हैं नहीं है तो नहीं है, बहुत सारे विचारणीय वस्तु है। आप जिस जायगा में हो इस जायगा में बहुत सारे विचारणीय वस्तु है, और इस विचारणीय वस्तु का एक एक जायगा में एक एक वस्तु को एक एक उद्देश्य लेकर के किया गया था। अगर हम इस उद्देश्य को ना समझ करके इसी के अंदर घुस जाए तो क्या हो जाएगा, अघासुर खा जाएगा। भक्तिनाथ ठाकुर नफर चंद्र पाल और भक्ति सिद्धांत ठाकुर में बातचीत हो रहा था, तो नफर चंद्र पाल ने पूछा ये भक्तिनाथ ठाकुर ने जो कहा आप उसका उल्टा क्यों जा रहे हो। भक्तिनाथ ठाकुर का अनुयायी थे, बोला आप लोग अभी तक भक्तिनाथ ठाकुर को समझ नहीं पाया। बोला देखिए नवद्वीप धाम में हरि कीर्तन करा रहा है जन्मस्थान में, जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्वधारी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय, नवद्वीप धाम में जहाँ जन्मस्थान है महाप्रभु का, वहां पर बाहर भाड़ाटी या कीर्तनिया ला करके कीर्तन करा रहा है, भक्त ठाकुर करा रहा है। हम आपने बाहर से बुलाकर उनको पैसा देकर के आप यहाँ कीर्तन करो जन्मदिन में। भक्ति सिद्धांत तो ठाकुर बोलता है तुम घर के अंदर घुस के फीरा मार के अंदर जप करो, तुम बाहर मत निकलो। क्यों? बोला ये तुम्हारे लिए नहीं है, एक कीर्तन सुनने के लिए तुमको, तुम्हारे लिए हमें एक कीर्तन का आयोजन नहीं किया। तुम घर में बैठ के हरि कीर्तन करो, हरिनाम करो, ये बाहर वाला लोग के लिए किया है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बाहर वाले लोग नवद्वीप को जानेगा ही नहीं, तो नवद्वीप का प्रचार कैसे होगा? तो लोग यहाँ आएगा तो क्या बोलेगा, श्रवणे मथुरा, बदने मथुरा, नयने मथुरा, मथुरा मथुरा, ये सब सुनेगा। नवद्वीप गया था, ये नवद्वीप गया था, ये नवद्वीप गया था, ये दिन भर जहां तक तो रास्ता से निकल कीर्तन सुन के जाएगा, नवद्वीप नवद्वीप करके जाएगा। तो भगवान का नाम और भगवान का धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो नवद्वीप नवद्वीप करते कर जो घर तक तो पहुंचे तो नवद्वीप का कितना बार नाम ले लेगा, उनका अज्ञान जनित सुकृति हो जाएगा। अभी सुकृति क्या, सुकृति में आज काम में और अपराध में अंतर क्या है, ये भी वस्तु है। सुकृति पाप और अपराध, तीनों में अंतर क्या है? पाप किसे कहते हैं? शास्त्र बहिर्भूत कर्म, इसको पाप कहते हैं। अज्ञान जनित भक्तांग कर्म को सुकृति कहते हैं, ज्ञान जनित नहीं, अज्ञान जनित, अज्ञान जनित भक्तांग कर्म का कोई अनुष्ठान करता है तो उसको कहते हैं सुकृति। और अपराध किसे कहते हैं? जानबूझकर भक्तांग का जो अनादर करता है वो अपराध है। समझ में आया? पाप का परिभाषा है, सुकृति का परिभाषा है, और भक्ति का अपराध का परिभाषा है। जैसे मंदिर झाड़ू मार रहे हैं, कोई बाहर से आया वो भी झाड़ू के झाड़ू मारे, उसको अज्ञान की तो सुकृति हुआ, बराबर। वही हम आप झाड़ू मार रहे हैं, हमको क्या मालूम है कि भगवान का मंदिर है, इसको सिस्टमेटिक करना हमारा कर्तव्य है, हमें इसको श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। हम बिना श्रद्धा में करके चला गया तो क्या होगी हमारे लिए? अपराध। तो हम जानते हैं, जानते हुए भी इनमें हम श्रद्धा नहीं लगाया, अथवा दो चार ये फूल टूटा हुआ पड़ा हुआ है उसमें अपना चरण को रख के चला दिया। हमें ख्याल है जो भगवान का निर्माण में पाव नहीं देना चाहिए, लेकिन हम उसको पाव रख देते हैं तो क्या हो जाता है हमारे लिए? लेकिन वो दूसरा व्यक्ति जिसको कुछ जानकर वो कैसा कर, उसको अपराध नहीं होगा, क्योंकि वो अज्ञान कृत है और हम ज्ञान कृत है। तो ज्ञान कृत भक्ति अंग जो है उनको अनादर करना अपराध है, अज्ञान कृत कोई व्यक्ति अगर करता तो सुकृति हो जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज का जो पूर्व जन्म का स्टोरी है, वो वेश्या ब्राह्मण दुनिया में झगड़ा हो गया, दिन भर उपवास हो गया। दूसरा रात को झगड़ा हुआ, सुबह वेश्या बोला हम इधर तुम उधर, वो ब्राह्मण एक तरफ वेश्या एक तरफ। रात को जंगल में जो पहुंच रहा है मंदिर है विष्णु मंदिर में, दोनों दो कर्नाल में बैठा हुआ है, किसी को मालूम नहीं दोनों बैठा हुआ है। दिन भर उपवास, रात्रि में मच्छर काट रहे, जागरण भी हो गया, सुबह जो हो रहा है इसको देख रहा है तुम ऐ तुम ऐ तुम, तब तो भगवान नृसिंह मंदिर आके हाजिर बोलता है तुम लोग हमारा व्रत किया। बोले कैसे? काल व्रत का तुम लोग उपवास रहा, रात्रि भी जागरण किया तो व्रत हो गया ना। अभी देखो बेचता ने बेचता गिरी जो भी झगड़ा किया, झगड़ागिरी करके आके व्रत अज्ञान की तो व्रत हो गया ना। और हम भी सोचे एक बेचतागिरी करके आज उपवास करेंगे हो जाएगा हमारे लिए, उनको जानकारी अज्ञान की तो सुकृति महत फलदायक हो गया। एक बन गया अप्सरा और एक बन गया प्रहलाद, ये स्टोरी है हरिभक्त विलास का। वो लड़की बेचता जो अप्सरा बन गए, स्वर्ग का अप्सरा, ये होता है। तो ये सुकृति और भक्तांग तो ज्ञान कृपा अगर कुछ करते हैं, ज्ञान कृपा अगर भक्तांग आधार का अपराध है यार, ये पाप है। इसलिए साधु सावधान, हमारा आचरण, हमारा विचार, हमारा सब कुछ इसी हिसाब से होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम समझ नहीं पाएंगे, हम मन में ऐसा करते रहेंगे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छा काम कर रहे हैं कि हम नरक जा रहे हैं, इसका डिपेंड कौन करेगा? विचार कौन करेगा? विचार करेगा शास्त्र, शास्त्र देख के हमें समझना चाहिए। ये अघासुर का लीला है, अघासुर को किस प्रकार किस भाव से रहते हैं कोई समझ नहीं पाएगा। वो खाते रहेगा हंसला कर बोला, उनका काम हा करके रहेगा, सब ग्रास करेगा। इसे जो वृंदावन धाम, वृंदावन धाम वास्तव में क्या वस्तु है? तीन धाम है, कौन कौन है? नवद्वीप धाम, नीलाचल धाम और वृंदावन धाम। गौरी वैष्णव का तीन सर्वश्रेष्ठ धाम है। नवद्वीप धाम क्या है वस्तु? तो नवद्वीप में नौ द्वीप है। तो भागवत में क्या वर्णन है? श्रवणम कीर्तन विष्णु शरणम पाद सवनम अर्चना वंदन दक्ष सैक्यमात्मा, ये नौ द्वीप नवदा भक्ति। अरे नवदा भक्ति नौ द्वीप क्या है? साधन भक्ति। कोई किसी को अगर भक्ति साधन करना है तो नवद्वीप में जाए, वहां अनर्थ युक्त व्यक्ति भी रह करके साधन भक्ति कर सकते हैं। अभी नवद्वीप हो गया साधना का क्षेत्र, जहां बैठकर साधन कर सकते हो। निराचल धाम क्या हो गया? भाव भक्ति। भाव भक्ति क्या है? ये नौ का साथ और दो योग करो, क्या योग करोगे? पतंग और परिचर्या। परिचर्या का मतलब क्या है? हाँ बजा रहा ना, इनको बोलते परिचर्या अर्चन। तो जगन्नाथ पुरी क्या होता है? जगन्नाथ जी क्या 54 बार खाता है, 54 टाइम जगन्नाथ जी खाते रहता है। नीलाचले खाओ तुम्हें 54 बार, तार अग्रे मुष्टाक अन्न में कुरियासी रंधन, शरम भट्टा जी करे। वे नीलाचल में तुम 54 टाइम खाते हो, उसके सामने भोजन क्या है? एक ग्रास है, खाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। नीलाचल है भाव भक्ति का जाएगा, प्रसंग और परिचर्या। प्रसंग क्या होता है? जगन्नाथ जी का कथा है ना, बट एक बट का झाड़ है, वहां पर वो जो भी हो कर्म मार्ग लोग वहां पर वेद इत्यादि पाठ करते रहते हैं, लोग कर्मकांड में वही जिसको ब्रह्म समझ करते वहां पर। तो नीलाचल में भाव भक्ति का जाएगा है। और वृंदावन क्या है? द्वादश रस का जाएगा है, प्रेम भक्ति। द्वादश वन है कि नहीं वृंदावन में? 12 वन 12 रस का क्षेत्र है। शांत दायित्व सैक्य वात्सल्य माधुर्य हास्य करुण उद्भूत भयानक दुभत्स रुद्र इत्यादि करके जो सप्त गौण और पंचमुख्य, ये द्वादश रस द्वादश वन है। तो वृंदावन क्या है? प्रेम भक्ति का जाएगा है। तो गौरी और धारा में तीन धाम है, एक नवद्वीप धाम, एक नीलाचल धाम, एक वृंदावन धाम। वृंदावन में प्रेम भक्ति राधा कृष्ण का उपासना, नीलाचल में भाव भक्ति, नवदा भक्ति में दो योग करना पड़ेगा, प्रसंगार पर याद रखो है, कभी किसी को बोल पाओगे, और नवद्वीप में नवदा भक्ति। ये है भक्ति। भगवान का 10 अवतार में हर अवतार में एक रस है और एक मुक्ति दास्य रस का साथ एक गौण भक्ति रस है। लेकिन वृंदावन में हर रस का साथ सप्त गौण रस रहता है वृंदावन में, और वात्सल्य तक रसाभास होता है। जो मधुर रस राधारानी में, उसमें कोई रसाभास नहीं होता है, उनमें समस्त रसों का समावेश है। ये वृंदावन भजन। तो वृंदावन भजन कैसे होगा? ये वृंदावन और लीला श्रवण कीर्तन के द्वारा वृंदावन भजन होगा। जितना वृंदावन का कथा श्रवण करेंगे, जितना भगवान का लीला कथा का श्रवण करेंगे, उतना उसमें हमारा मन आकृष्ट होगा, और जितना हमारा मन उसमें आकृष्ट होगा उतना ही हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए ललायित रहेंगे। जितना लोक बढ़ेगा उतना तृष्णा बढ़ेगा, जितना तृष्णा बढ़ेगा उतना लोभ बढ़ेगा, लोभ और तृष्णा बढ़ते रहेगा। यही लिए हमको ब्रज भजन में ले जाने के लिए साधन प्रणाली है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये है भक्ति। एवं भी तो जो भक्ति है, इस भक्ति को लाभ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जदा भ्रामं भ्रामं हरिरस गलदं वैष्णव जनं कदाचित संपश्यं तदनुगमने साधु रुचिरिया तदा कृष्ण आवृत्या तये शनैक माइक दतांग। जदा भ्रामं भ्रामं, इस संसार में भ्रमण करते करते, ये संसार बहुत बड़ा है, संसार में जब हम भ्रमण करते रहेंगे, जदा भ्रामं भ्रामं, इस संसार में 84 लोक जीव दुनिया में भ्रमण करते करते कभी अगर मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए, हरिरस गलद वैष्णव जनम, हरिरस गलद जो हरिरस में मत्त है, तदानुरागी जनानुगामी, तद अनुरागी जो है उनका अनुगमन करना चाहिए। दीक्षित अय्या भजे तुआपद ताहारे प्रणत करी, अनिन्द भजने विज्ञ जेजन ताहारे सभी बहरी, सर्वभूते सम जे भक्तिर मती ताहारे दर्शन मानी, आपनाके धन्य सत्संग पाइया चरितार्थ हो जान। निष्कपटमती वैष्णवर प्रति कबेवा हईबे मोर, ये जो सर्वभूते सम त्रिविध वैष्णव, एक वैष्णव वो है जो दीक्षित होया भजे दुआ पर, दीक्षा लेकर के भजन करता है, एक वैष्णव है उसको प्रणाम करो, ताहारे प्रणति करी, और दीक्षित होया भजे दुआ पर ताहारे प्रणति करी, और जो भजन में प्रवीण है ताहारे सेवी वो हरि। जो भजन प्रवीण है उनका सेवा करना चाहिए, और सर्वभूते सम जे भक्तिर मती ताहारे दर्शन मान, जो सर्वभूत में समदृष्टि संपन्न उनका का दर्शन हो जाता है तो हरिभक्ति फोकट में मिल जाता है, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। रूपा जी फरन गया, उनका दर्शन में सब तो हो गया ना, सर्वभूते सम रूपा, ये लड़की है, ये लड़का है, ये चाड्डी पहन के आया, ये कुछ पहना ही नहीं है, पूर्वज देखा कभी? वो उसको पूर्वज सब क्या था? हिप्पी, सब हिप्पी है। पूर्वज ये विचार नहीं किया चाड्डी पहना है क्या पहना है, सर्वभूते सम, सर्वभूते सम जे भक्तिर मती, इसलिए लोग पूर्वज को देखा, आप पूर्वपाद को देख के वो लोग आकर्षित हो गया, पूर्वपाद आकर्षित नहीं हुआ, हम ये लोग को देख के हम खुद उसका पीछे भाग जाएंगे, क्योंकि पूर्वपाद उसका पीछे नहीं हुआ, पूर्वपाद का पीछे वो लोग भागे, समझना, सर्वभूते समझे भक्ति मोती क्या है, देखते हैं ना, ये है सर्वभूते समझे भक्ति मोती ताहारे दर्शन मानी, अपना के धन्य सत्संग पाइया चरितार्थ हो जान। 15 मिनट में भक्त बना दे प्रभुपाद, ये है प्रभुपाद का, इसलिए ये त्रिविध भक्त, ये त्रिविध भक्त का भ्रामं भ्रामं हरिरस गलद वैष्णव जनं, संसार में भ्रमण करते करते अगर एवं विध वैष्णव का दर्शन हो जाए, कदाचित संपश्यन, कदाचित बाय क्या, ये नहीं है भाई रास्ते में खड़ा है जाकर देखने के लिए मिल जाएगा, ये नहीं, कदाचित किसी कारणवश कैसे भी करके, बा उन्होंने अगर दर्शन देना चाहा तो वृंदावन भजन का व्यक्ति नहीं है, 300-400 साल का भी साधु वृंदावन में मालूम है, लेकिन उनका दर्शन नहीं होता है, लेकिन है। बोला आपको कैसे मालूम? हमारे चाचा है उधर वो बताया हमको, पर उनका दर्शन मिलेगा नहीं। ऐसे भजन कर रहा है बिल्लो मंगल ठाकुर, 700 साल भजन किया था, 700 ईयर्स। जगन्नाथ शिवाजी महाराज 152 साल, 152 साल जिंदा था, अभी सोचो। हरि भजन बोलते हैं, अगर आप मरना नहीं चाहो तो मरोगे नहीं, क्योंकि शरीर दिव्य बन जाता है। ऐसे भक्तों का अगर दर्शन हो जाए, कदाचि संकोच तब अनुगमने साधो रुचि हो, उनका अनुगमन में दर्शन होने से पवित्र होगा, लेकिन उसका अनुगमन भी करना चाहिए। जो प्रभुपाद ने जो बोला फर्नांडो मान लिया, प्रभुपाद ने कहा आगे कुछ नहीं, इसके आगे क्या है, मरना कि जिंदा रहना है, इसका देखने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद ने कहा, तो कितना निष्ठा था प्रभुपाद पर, हमारी निष्ठा है गुरु महाराज में बिल्कुल नहीं। साधु तदा कृष्ण आवृत्या, जैसे ऐसे होगा तो कृष्ण आवृत्ता, जो माया हमें आवृत करके रखा वो आवृत छूट जाएगा, तेज की माया का दशा, माया दशा ताग हो जाएगा। स्वरूप विभ्राणम स्वरूप लभते, अपना स्वरूप जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदावेश प्रकाश, कृष्ण बोले से जीवनादि महिर्मुख, अति माया करे देह संसार दुख। कभु नदी के डुबाए कभी का डुबाए, दंड जन राजा जन दंड जने दंड दे चार, ये हमारे लिए संसार है, इसलिए हमें बुद्धि है, अच्छा बुरा का विचार करने का क्षमता भी थोड़ा बहुत तो है, नहीं है। तो ये विचार करके हमें सोचना चाहिए कि हमारा कर्म कैसे हो। कर्मों को चेंज किया जा सकता है, लेकिन कर्म करने के बाद उसका फल का चेंज नहीं किया जा सकता है। जब तक करेंगे नहीं तब तक चेंज हो जाएगा, लेकिन एक बार कर दिया फिर बोले हम चेंज करेंगे, ये असंभव है। इसलिए हमें कर्म का चेंज करने का क्षमता हम में है, अगर हम इसको चेंज करके सही तरीके से अगर जाए तो क्या होगा, हमारा भक्ति होगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम सोचते रहेंगे जो हम तो भक्त बन गया, मंदिर में ज्वाइन कर लिया, कपड़ा तो पहन लिया, और क्या चाहिए, हम एक डिवोटी है, ये मन में सोचते रहेंगे, अवघास खाते रहेगा, खाके एक दिन अवघास क्या करेगा, हजम कर देगा, हमारा अस्तित्व विनाश हो जाएगा, हम निर्विशेषवादी बन जाएंगे। इसलिए ये सब चीज के द्वारा हमें समझना अति आवश्यक है, हमारा कर्म, हमारा भक्ति, हमारा जो कुछ भी वस्तु है उनको देख करके हमें अपना आचरण सुधारना चाहिए। कोई भरोसा नहीं है, आधा घंटा बाद ही मर सकता हूँ, मृत्यु कोई बोल नहीं सकता कब होगा, कभी भी हो सकता है। मृत्यु से पूर्वे अगर हम अपने आप को सुधार लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा, कोई भी किसी से देश नहीं रखने का, ऐसा कि अपना शत्रु से भी देश नहीं रखना चाहिए। देश में क्या होता है, क्रोध होता है, देशी व्यक्ति को अगर कुछ मिले तो देश के हमें असहिष्णु होता है, हमें क्रोध होता है, ये देश को भी किसी से नहीं करना चाहिए और कोई वस्तु का कामना नहीं करना चाहिए। अगर कामना करेंगे तो लोभ होगा, ये किसी वस्तु में कामना नहीं होना चाहिए, जो मिल गया उसमें संतोष रहो, तथा लाभे संतोष। यहां तो है तुम्हार भक्ति धर्म कोष, जो मिला उसमें संतुष्ट रहा, इसमें भक्ति लाभ होता है। ये विचार करके अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, हमारा भी हरि भजन होगा। और एक बार भजन अगर शुरुआत होता है तो क्या होगा, बाकी दूसरा चीज में रुचि नहीं होगा। जैसे करेला का भाजी रखे यार एक जगह में, पनीर का सब्जी रखे, जब तक पनीर का सब्जी नहीं खाएंगे तब तक करेला का सब्जी अच्छा लगेगा। जैसे पनीर मिल गया बोला करेला कड़ुआ कौन खाएगा। एक बार अगर भक्ति रस का आस्वादन हो गया तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो देखो हरिदास ठाकुर का कृपा से जो लक्ष्य हीरा बेचा था, हरिदास ठाकुर ऐसा कृपा किया और बेचा ना बेचा गिरी छोड़ के हरि भजन करने लग गया, आज उसमें उसका रुचि नहीं हुआ, बिना ही आउ जाके करू नहीं। एक बार आ गया, कृपा हो गया तो ताप करके हरि भजन में लग गया, तो हरि भजन कितना पावरफुल है। एक बार अगर रुचि हो जाए, एक बार अगर अपना माई को दशा जो है इसको अगर क्रॉस कर लिया, जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक तकलीफ है, तब तक अपने आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर क्रॉस हो गया, बॉर्डर लाइन क्रॉस हो गया तो नो टेंशन, जब तक बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं होता तब तक तकलीफ है। इसलिए बॉर्डर लाइन क्रॉस करने के लिए साधनांग है, 64 प्रकार साधन है, वो 64 प्रकार साधनांग को हमें सही तरीका से पालन करना चाहिए। कृपि साध्य भवेत साध्य नविदा साधना विद्या नित्य सिद्धेश्य भावश्य प्रकट्य ही साध्यता, साधन भक्त इसको कहते हैं। नित्य सिद्धेश्य भावश्य प्रकट्य ही साध्यता, नित्य सिद्ध भाव के हृदय का प्रकट करने की जो विधि है उसको कहते हैं साधन भक्ति। भक्ति साधन नहीं किया जाता है, जहां भक्ति साधन करके जैसे चौपिस्ता कर कुछ फल ऐसे भक्ति साधन करना नहीं किया जा सकता है। भक्ति ऑलरेडी जितना सारे जीव है सब जीव में भक्ति है, पढ़ाई करके ज्ञान अर्जन किया जा सकता है, साधन करके भक्ति अर्जन नहीं किया जा सकता है। भक्ति हर जीव में है, हर जीव में भक्ति है। जिस दिन जीव का सृजन हुआ उस दिन जीव के हृदय में भक्ति भी दिया गया है, उनको प्रकट करना, और उस प्रकट करने का जो विधि है उसको साधन कहते हैं। लाना नहीं, बाहर से ला करके भक्ति करेंगे नहीं, ये नहीं है। इसी कहते नित्य सिद्धेश भावश्य प्रकट ही सिद्ध का, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बनाए श्रवणादि शुद्ध जित्ते कर उदय, नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम हमें है, ऐसा नहीं कृष्ण प्रेम नहीं है, ये उस कृष्ण प्रेम का प्रकटीकरण करना पड़ेगा। धान कोई भी बिया हो बीच, उसमें अंकुर उद्गम का क्षमता है, लेकिन इसका ऊपर आगे अंकुर जितने उद्गम होगा, अगर ऊसर भूमि में डाल दे फिर भी उद्गम होगा, अगर बैल पानी में डाल दे कभी उद्गम होगा, और रात का अंदर फेंक दे तो कभी उद्गम होगा। जिस पर मिट्टी तैयार करके उसको पानी उमी दे करके डाल दिया जाए तो झाड़ निकल जाएगा। ये हृदय को ऊसर भूमि नहीं बनाने का, ऊसर भूमि क्या है, मायावादी वैराग्य, कौन सा वैराग्य, फलगु वैराग्य। कृष्ण भजने जहा अनुकूल विषय बोलिया तागे है भूल, कृष्ण भजन में जो अनुकूल है उसको विषय रूप में ताग करने से गलती होता है। तो बोला ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इसको यूज भक्ति में नहीं करेंगे, ये तो माया है, इसमें आप गाली दे सकते हो, दूर तक तो सुनाई देगा, جس کو آپ کرشن بول کے جو سوال کرو دور تک سنائی دے گا. چیز وہی ہے, اپوجگ کا طریقہ الگ ہے. اس لیے بشوئے بولیا تاکہ بھائی بولے, اس لیے پہلے کہا تھا نا بھکتی ٹھاکر کا کیرتن پروپد کا اسکون. پروپد کے اسکون میں کیا ہے؟ بشوئے بھرا پڑا ہوا ہے, ہر جگہ میں بشوئے رکھا ہوا ہے. جدھر آپ گھماؤ گے ادھر بھی شاید, لیکن پورو بات کس کے لیے کیا تھا اسکن کا سپنا, ہمیں اس سے بات پہ رہنا پڑے گا. ہم یہ سب کس نے کیا, لوگ آئے گا دیکھے گا جائے گا اور جان جائیں گے سوکتی ہوگا. ہمیں اس میں رمنا نہیں ہے, ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کا بھی نہیں ہے. اگر ہم اس میں رم گیا, ہم اس کے پیچھے پڑ گیا تو ہمارا بھی کوئی لین ہو جائے گا. ہمیں ہری بھجن کرنا ہے. کیا بولتا ہے؟ سروسو تمہارا چرن سپریا پڑھے تمہارا گھرے, تم ہی تو ٹھاکر ہمیں تو کپور بولیا جانو ہو مرے. کیا ہم سروسو تاگ کر پایا اور بچار کرنا آج رات کو یہ چل کر کے بچار کرنا کہ میں نے سروسو تاپ کیا. دیکھنا سروس مطلب کیا ہے؟ ہمار امت تو بول کے جو وستو اس کو ہم تاپ کر پایا. تو ہری وزن کیا ہوا بچار کرو. چیتنیہ چندر دیا کرہ بچار, بچار کرلے چتے پاوے چمتکار. یہ سب بچارین وستو ہے. جام سروست سروست تمہارا چرن سپیا, تمہیں معلوم ہے میں گھر تاک کر کے آ گیا. ہم بھی دیکھ رہے ہیں نا تاک کر کے آیا کہ نہیں گیا. اس لیے انتی نہیں ہوتا ہے. ہم سوچتے رہے اتنا سال ہو گیا, ابھی تو ہری ہری بولی تھے نئن ابھی میں بھی نئن میں نیر کیا, نئن میں کرودھ کا انگار نکلتا ہے. نیر کہاں سے آئے گا؟ گورانگ بولی تھے ابھی پلو کا شریر, گورانگ کا نام لینے سے کرودھ ہوتا ہے. جی گورانگ نام لائے تار ہوئے پرمود ہوئے تارے منہ جائے بولی یاری گورانگ گنے تو جوئے نتیہ لیلا تارے سورے سیجن بھکتی ادھیکاری. بولتا ہے وہ گور گور نہیں بول رہا ہے, وہ پیسہ پیسہ کر رہا ہے. ایک چرتا بلی ہے گور کشن داس جی مہاراج, بولے بابا تو بھاگوت پاٹ کر گور گور کرتا ہے, بدھ بدھ دھو. وہ گور گور نہیں کر رہا ہے, ٹکا 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 کر رہا ہے. وہ گور تھوڑی کر رہا ہے. یہ حال ہے. ہا پیسہ جا پیسہ, کب کتنا پیسہ آیا بھاگوت پتا ہوتا ہے؟ ایک کتا سن کے کیا کرو گے؟ کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس سے اچھا یہ پڑھو گھر میں کھیلا لگاؤ اور گھر میں بیٹھ کے پڑھو, کچھ ہونے والا ہے. چلو ہرے کس میں